कराते क्लास चल रहा था, 12-4-68 तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि बाप के पास मत होगी तो किसी को देंगे ना, अपने पास तो नहीं रख लेंगे, उनकी मति से ही सदगति होती है ये तो जरूर बतावेंगे ना। परंतु साधु सन्यासी कह देते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम्हें ही जानो, हम नहीं जानते हैं। परंतु ये भी कोई बात नहीं है, अभी बाप कहते हैं इस श्रीमत से ही तुम्हारी गति होती है, तुम्हारी गति मत तुम्हें ही जानो, वो अभी तुम समझते हो कि बाबा जो कुछ जानते हैं वो हमें बताते, हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, और वो कहेंगे तुम गत मत तुम्हें ही जानो, परंतु तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। ये बातें बुद्धि में बैठने में भी टाइम लगता है, फट से कोई की बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। अगर कोई संपूर्ण बन जावे फिर तो यहां से ही चले जावेंगे। इस विकारी दुनिया में मन बुद्धि रूपी आत्मा ठहर नहीं सकेगी, परंतु अभी किसी को जाना तो नहीं है ना, क्योंकि झट से कोई भी संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। याद का अभ्यास करने में टाइम लग जाता है, ये भी कहते हैं कि अभी अजन मुझे बनना है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करने वालों को बल पहले जरूर बैराग आया होगा, तो शास्त्र में भी लिख दिया है बिनु वैराग विवेक न होई। ये विवेक जागृत होता है तभी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। अभी देखो इन्होंने देखा कि मैं डबल सिरताज बनता हूं, और ये भी बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार दिखाया, तो ये झट खुश हो गया। और खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया, कैसे झटके से वैराग आ गया। साक्षात्कार में विनाश भी देखा और चतुर्भुज रूप भी देखा, समझा भी राजाई मिलती है, थोड़े ही रो रोज में ये सब कुछ विनाश हो जाएगा। ऐसा इन्हों को नशा चढ़ गया, परंतु अभी तो देखने में आता है कि ये एक की बात नहीं थी, अभी तो बहुतों को राजाई मिलनी है। अकेले एक हम जाकर के क्या करेंगे? परंतु ये ज्ञान तो अभी मिलता है। पहले तो साक्षात्कार से खुशी का नशा ही चढ़ गया, खुशी का पारा चढ़ गया। अभी समझते हैं ये तो ठीक है, जरूर हमारी राजधानी बनेगी। बाकी राजधानी में आने वालों को सभी को पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और यहां तुम अभी पुरुषार्थ के लिए ही बैठे हो। सुबह को भी तुम याद में बैठे थे, और ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो कि बाप आया है, बाप आया है, दादा आया है, ये तीन शब्द अलग अलग क्यों बोले? क्या बाबा, बाप और दादा अलग अलग हैं क्या? जरूर अलग अलग आत्माएं हैं। बाबा तो कहा ही जाता है निराकार और साकार के मिल को। निराकार वो जो सदैव ही निराकारी ज्योतिबिंदु स्टेज में टिका हुआ है, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ही है, वो कभी विकारी नहीं बनता, कभी भी अहंकारी नहीं बनता। देह अहंकार आता ही नहीं, उसको देह है ही नहीं, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं। परंतु वो बिंदी जो सदैव निराकार है, वो इस सृष्टि में आकर के कोई साकार में प्रवेश करती है। ऐसी साकारी आत्मा में प्रवेश करती है जो ऑल राउंड 5000 वर्ष साकार पार्ट बजाती है। तो निराकार और साकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकार मनुष्यों का बाप। दोनों का मेल बाबा है। और दादा किसे कहा जाता है? दादा बड़े भाई को कहा जाता है। सच्चे रूपी रंगमंच में या इस सच्चे रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है वो ही बड़ा भाई है। उसे बीज बाप नहीं कहेंगे, उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज रूपी बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है। इन बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी ही जाने। मीठे ते मीठा गुड़ तो शिव बाबा ही है, गोथरी वो है जिसमें वो प्रवेश करता है। वो बाबा एक एक बच्चे को बैठे देखते रहेंगे, एक एक को बैठ करके साकाश देते हैं। ये साकाश देना ही योग की अग्नि है। चाहते हैं कि योग अग्नि से बच्चों के विकर्म विनाश हो जाएं। जैसे कि बैठ करके एक एक को लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सच लाइट देते जावेंगे और बैठेंगे ही ऐसे, तो ये बाप कहते हैं मैं ऐसे बैठता हूं, ऐसे बैठ करके एक एक आत्मा को करंट देता हूं। किन बच्चों में ताकत भरती जावे, अगर कोई की बुद्धि बाहर भटकती होगी तो वो करंट कैच नहीं कर सकेंगे और फिर उनकी बुद्धि कहां ना कहां भटकती ही रहेगी, तो बताओ उनको मिलेगा क्या। कहते हैं ना, मिठुरा घुरत घुराए, प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। बुद्धि बाहर में घूमती रहेगी तो क्या दूर मिलेगा। तुम प्यार करेंगे बाप को तो प्यार पावेंगे, बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो तुम्हारी बुद्धि बैटरी को चार्ज नहीं कर सकेगी। बाप तो आते ही हैं तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने, उनका फर्ज है सर्विस करना। किसने बोला, और किसके द्वारा बोला। उनका फर्ज है सर्विस करना। ब्रह्मा के मुख से बोला, और शिव बाबा ने ही बोला। बोलने वाला शिवात्मा ही है तो ऐसे क्यों बोलते हैं उनका फर्ज है सेवा करना। उनका कह के दूर क्यों कर दिया। ब्रह्मा के तन में ही तो बैठे बोलते थे, इसे साबित होता है कि करंट देने वाला, आत्मा को ताकत देने वाला बाबा भविष्य में पार्ट बजाने वाला है। बाप आकर बच्चों की सर्विस करते हैं, बच्चे बच्चे सर्व संगीकार करते हैं व नहीं करते हैं वो तो बच्चों की आत्मा ही जाने। कि किस ख्यालात में बैठते हैं और ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं भी परमात्मा हूं। भी क्यों लगा दिया? ये किसने कहा मैं भी परमात्मा हूं? शिव बाप ने ही कहा, परंतु परमात्मा क्यों कहा? आत्माओं के बीच में इस सृष्टि पर जो भी पाठधारी आत्माएं हैं उनके बीच में परम पाठ बजाता है। भी इसलिए लगाया कि संगम युग में परम पाठ बजाने वाला सुप्रीम सोल बाप है और सारे ही 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी बाप प्रजापिता भी है। दोनों में बड़ा कौन है? जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो शिव बड़ा है, शंकर छोटा है। शंकर याद में बैठा हुआ है, जरूर आत्माओं के बाप की याद में बैठा है। तो जिसकी याद में बैठा है वो बड़ा ठहरा। ऐसे ही कहा जाता है परमपिता परमात्मा। पिता के रूप में जो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें परमपिता के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा शिव बाप ही है। वो साहब का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, और प्रजापिता का भी बाप है। इसलिए वो परमपिता है। परंतु परमात्मा शब्द बाद में लगा हुआ है। क्योंकि आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी के रूप में परम पाठधारी बाद में तैयार होता है और बाद में पहचाना जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि मुझ बैटरी के साथ तुम योग लगाते हो, मैं भी साकाश दूंगा। यहां भी लगा दिया, अर्थात शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल भी साकाश देता है और जिसमें प्रवेश करता है वो भी संपन्न होने के बाद बच्चों को साकाश देता है। बाप कहते हैं बहुत ही प्यार से एक दो को साकाश देता हूं, तुम तो बैठेंगे बाबा को याद करने, तुम याद करने बैठेंगे। और बाप कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूं। सामने बैठ करके सर्च लाइट देता हूं, तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। अर्थात ये सर्च लाइट देने का काम एक ही परमपिता परमात्मा का है, और कोई भी मनुष्य मात्र का नहीं है, क्योंकि इसे कलयुग के अंत में सात की बैटरी डिस्चार्ज है। ये सकाश देने का काम इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें उनके द्वारा ही होता है। मनुष्य मनुष्य को बैटरी चार्ज करने का सकाश नहीं दे सकता। संग का रंग नहीं लगा सकता। इसलिए मुरली में बोला भी है कि जब तुम याद में बैठते हो तो एक दूसरे के अंग से भी अंग नहीं लगना चाहिए। अंग से अंग लगता है तो भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तथा कथित ब्राह्मण अपन को शिवो हम समझ करके बैठ जाते हैं। और दूसरी आत्माओं को सच लाइट देना शुरू कर देते हैं। परंतु बाप का डायरेक्शन है तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। ये सर्च लाइट देने का काम एक ही बाप का है। जो पकड़ने वाला होगा वो पकड़ेंगे, और उनकी बैटरी चार्ज भी होगी। दिन प्रतिदिन बाप वो युक्तियां बहुत समझाते रहते हैं। क्या युक्ति बताई? 63 जन्मों में आत्मा की बैटरी तीव्र गति से कैसे डिस्चार्ज होती है? और संगम युग में बैटरी कैसे चार्ज होती है? सतयुग त्रेता में बैटरी धीमी गति से कैसे डिस्चार्ज होती है? ये बात बाप बैठ समझाते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों का संग का रंग सतयुग त्रेता में लगता है, और वो संग का रंग अभिविचारी रूप में लगता है या व्यभिचारी रूप से लगता है? बोला है राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो जो श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें हैं उनका संग का रंग व्यभिचारी हुआ या अभिविचारी हुआ? क्या कहेंगे? अब विचारी संघ का रंग हुआ, परंतु संघ का रंग आत्मा के साथ हुआ या परमपिता परमात्मा के साथ हुआ? सतयुग त्रेता में परमपिता परमात्मा तो होता ही नहीं, परमपिता परमात्मा तो शिव बाप को ही कहा जाता है। जबकि वो आकर के परम पाटधारी, हीरो पाटधारी, ऑलराउंड पाटधारी में प्रवेश करता है, परंतु सतयुग त्रेता हो चाहे द्वापर कलयुग हो, चारों युगों में उस बाप का परिचय किसी को नहीं मिलता। इसलिए आत्माओं का आत्माओं के साथ कनेक्शन होता है। सतयुग में अभिविचारी संयोग होता है, इसलिए आत्मा धीमी गति से गिरती है, इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। और इंद्रियों से ही दुख भोगा जाता है, इंद्रियां जब विविचारी बनती हैं तो दुख शुरू हो जाता है। इंद्रियां जब श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी इंद्रियां बनती हैं, भ्रष्टाचारी इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो भी तीव्र गति से नीचे गिरते हैं। संगम में ही ऊंचा उठना होता है। क्या कारण है जो संगम में ही ऊंचा उठते हैं? एक बाप का ही संग होता है, वो भी तब होता है जब पक्का पक्का बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाए। अनिश्चय मात्र भी ना आने पावे। आज निश्चय हुआ, कल अनिश्चय बैठ गया। आज बाप का बच्चा बना, कल भूल गया। तो संघ का रंग एक ऊंचते ऊंच बाप से लगेगा या अनेकों से लगेगा? अनेकों का संघ का रंग होगा तो फिर नीचे गिरते हैं। ये 5000 वर्ष की चढ़ने की और गिरने की शूटिंग होती रहती है। बताया कि बाप तो दिन प्रतिदिन युक्ति समझाते रहते हैं कि कैसे ऊपर चढ़ना है और कैसे नीचे उतरना होता है। बाकी समझना या न समझना वो तो नंबरवार स्टूडेंट्स के ऊपर है। बहुत बाप के द्वारा तरावटी माल मिलता है, इतना तरावटी माल मिलता है कि कोई कोई तो हजम भी नहीं कर सकते हैं। या तो उल्टी कर देते हैं या तो दस्त हो जाते हैं, नहीं तो बड़ी भारी लॉटरी मिलती है बाप से। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। تو اس لاٹری پر پورا اٹینشن دینا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ ہم اونچتے اونچ باپ سے کرنٹ لے رہے ہیں. یہ بھی سمجھنا ہے کہ باپ برکوٹی کے بیچ میں بیٹھا ہے. جس کو اکال تخت کہا جاتا ہے, یہ برکوٹی اکال تخت ہے نا. اکال تخت ارتھات جس کو کوئی کال کھا ہی نہیں سکتا. کال آتما کو کھاتا ہے یا شریر کو کھاتا ہے؟ کال تو شریر کو کھاتا ہے, پرنتو سپریم سول باپ جسے شریر روپی برکوٹی میں بیٹھتے ہیں اس کو کال بھی کھا نہیں سکتا. تم کو بھی اپن کو آتما سمجھ کر کے باپ کو یاد کرنا ہے. نکین برہما کو یاد کرنا ہے. برہما کی آتما کو تو یاد نہیں کرنا ہے نا. اس لیے مرلی میں بولا ہے کین کا تو فوٹو بھی نہیں رکھنا ہے. اگر برہما کا فوٹو بھی رکھیں گے تو پتت بن پڑیں گے, پاون نہیں بنیں گے. تو بدھی میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں نہ برہما سے نہیں ان سے یوگ لگاتے ہیں. یہ ان سے کہہ کر کے دور کیوں کر دیا؟ بولنے والا سپریم سول باپ تو برہما کے تن میں ہی بیٹھ کر بولتا تھا, تو ان سے کیوں کہا؟ ضرور وہ باپ جو کرنٹ دینے والا باپ ہے, نراکاری اسٹیج والا باپ ہے, وہ بھوشیہ میں پارٹ بجانے والا ہے. بل برہما کے تن میں آ کر کے مرلی چلائی, پرنتو ان کے دوارا کرنٹ نہیں دیا. جو آتما پاورفل بن جائے, کیونکہ کرنٹ دینے والا پریکٹیکل میں, ساکار میں, نراکاری اسٹیج والا ہونا چاہیے. برہما کا ایک بھی فوٹو ایسا نہیں ہے جو ابراہیم, بدھ, کرائسٹ اور گرو نانک کی طرح نراکاری اسٹیج والا ہو. برہما بابا کے ہزاروں کی تعداد میں فوٹو کھینچے گئے, پرنتو ایک ہی بھی فوٹو ایسا نہیں ملے گا جو نراکاری اسٹیج والا ہو. ساکاری اسٹیج مانا دیوان کی اسٹیج, جو ثابت کرتی ہے کہ آتما دیہ میں دھری ہوئی ہے, ارتھات دیہ دھاری ہے. جیسے گرو لوگ دیہ دھاری ہوتے ہیں, ان گروؤں کے بیچ میں دنیا کا سب سے بڑا گرو کون ثابت ہوتا ہے؟ جو دیہ داری ہو. برہما ہی دیہ داری دنیا کا سب سے بڑا گرو ثابت ہوتا ہے. اگر دیہ داری نہ ہوا ہوتا तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की भी मूर्तियां पूजी जाती, ब्रह्मा के भी मंदिर बनते। जैसे त्रिमूर्ति में शंकर को और विष्णु को पूजा जाता है, ऐसे सब बैठ करके ब्रह्मा की भी पूजा करते। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप के द्वारा बाप ने सर्च लाइट देने का पार्ट ही नहीं बजाया। इसलिए बोला कि सदैव ऐसे समझना है कि हम उनसे बैठ करके योग लगाते हैं, इन ब्रह्मा को देखते हुए भी हम उनको याद करते हैं, भविष्य के पार्टधारी की तरफ इशारा किया। ये आत्मा की बात है, अच्छा बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 18/4/68। सर्विस का समाचार आना है तो सिर्फ दिल्ली के म्यूजियम का आना है, कौन सी सर्विस है? कौन से म्यूजियम की सर्विस है? एक जड़ चित्र होते हैं, एक चैतन्य चित्र होते हैं। बाप आया हुआ है, संसार को चैतन्य चित्रों की म्यूजियम बनाने के लिए, जहां चैतन्य चित्रों की म्यूजियम में सबको साक्षात्कार हो जावे कि ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे कौन कौन हैं। जो जन्म जन्मांतर है संसार में राजाई करते हैं, ये राजाई का वर्षा बाप के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं देता है। पढ़ाई पढ़ा करके राजा कोई नहीं बनाता, डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, मास्टर बनावेंगे, जज बनावेंगे, हर राजा कोई नहीं बनाता है, क्योंकि कोई भी राजयोग सिखाने की कला नहीं जानता। ये बाप ही भारत में आकर के राजयोग सिखाते हैं। जिससे आत्माएं जन्म जन्मांतर का राजा बनती हैं, तो बाप का कहना है कि ऐसे चैतन्य चित्रों का म्यूजियम और कहां बना ही नहीं है। कल کلکتے میں بھی بنا نہیں ہے، صرف دہلی میں بنا ہے، یا تو دوسرا جے پور میں ہے، پرنتو دہلی اور جے پور کی سروس میں رات دن کا فرق ہے، باپ آئے ہیں نئی دنیا بنانے کے لیے تو نئی دنیا کی راجدھانی کہاں استھاپن ہوگی، دلی میں استھاپن ہوگی یا جے پور میں استھاپن ہوتی ہے، دلی میں تو ایم پی آتے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ایم پی آدھے شاید دلی میں ہی ہیں، تو دہلی میں اس میوزیم کے کارن بڑی بھاری سروس ہو جاتی ہے، دہلی میں ہی کوشش کرتے ہیں، کیسا میوزیم بناویں جہاں نمبر وار چیتنیہ چتروں کا ساکشاتکار ساری دنیا کو ہو جاوے، کیونکہ ساری دنیا میں ہر دھرم کے اندر ہے وہ نمبر وار شریشٹھ آتمائیں مالا کے روپ میں سمرن کی جاتی ہیں، مالا مانے سنگٹھن، ایسی شریشٹھ آتماؤں کا سنگٹھن باپ ہی آ کر دہلی میں استھاپن کرتے ہیں، پرنتو باپ کہتے ہیں بچے دہلی میں کوشش تو کرتے ہیں پرنتو میوزیم بنانے کی ایسی جگہ نہیں ملتی ہے، جب تک راجوری کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کہاں بھی میوزیم بنائے نہیں سکتے، ہاں کہاں کرائے پر مل جائے تو اچھا ہے، بھکتی مارگ والوں سے گیان مارگ والوں کو یدھ کرنی ہے اور یدھ کرنی ہے تو سینا بھی چاہیے، کون سے بھکتی مارگ والوں کی بات کی اور کون سے گیان مارگ والوں کی بات کی، ہماری لڑائی کس سے ہے، باہر والوں سے لڑائی ہے یا اندر کے وکاروں سے لڑائی ہے، جیسے وکاروں سے لڑائی ہے وکار اندر ہی بھرے پڑے ہیں، ایسے ہی برہمنوں کی دنیا میں بھکتی مارگ والے یا بھکتی کے فاؤنڈیشن ڈالنے والے باہر نہیں ہیں، ہمارے برہمن پریوار کے ہی اندر ہیں، اور راجدھانی دلی ہے، دلی کے نزدیک ہی کرو چھیتر میں مہابھاری مہابھارت یدھ گایا ہوا ہے، تو بولا कि दिल्ली में भक्ति मार्ग वालों की बड़ी भारी सेना है। तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए ज्ञान मार्ग वालों की भी बड़ी सेना चाहिए। कौन सी सेना पुरानी है और कौन सी नई है? भक्ति मार्ग की सेना पुरानी है या नई है? है पुरानी है, फिर नई सेना कौन सी है? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग की सेना भी है, जो ज्ञान को न समझने के कारण, ईश्वर बाप को न पहचानने के कारण भक्ति मार्ग वालों का ही अनुसरण करते रहते हैं। उस भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद होना है, ज्ञान मार्ग को जिंदाबाद होना है। सुप्रीम सोल बाप का बताया हुआ मार्ग ज्ञान मार्ग है और देहधारी गुरुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग भक्ति मार्ग है। अभी तो ज्ञान मार्ग वालों की सेना 0.25% भी तैयार नहीं हुई है। कौन से सन की मुरली है? है 68 की वाणी है और अभी कितने साल बीत गए? है कितने साल बीत गए? 40-45 साल बीत गए। तो देखो भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले जिनकी संख्या बहुत भारी है, जहां एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ ज्ञान मार्ग वाले, तुम कितने थोड़े हो। जिनको बाप का भी ज्ञान है और बाप के बताए हुए रास्ते का भी ज्ञान है, तुम्हारा प्रभाव तब निकलेगा जब तुम बच्चे जोर भरेंगे। अभी तो बच्चों में सर्विस का जोर ही नहीं है। आज जोर भरता है, कल ठंडा हो जाता है। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। किस बात के ज्यादा विघ्न पड़ते हैं? पवित्रता की बात पर ही बड़ा झगड़ा चलता है। इस झगड़े के कारण कलकत्ते में भी मकान नहीं मिलता। उनको भी ये ख्याल रहता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाती हैं। अभी ये घर तो सबके फिटने ही हैं, कि ये घर परिवार बने रहेंगे, है, ये दुनियावी संबंध बने रहेंगे या टूटेंगे, क्या होगा है? ये देह के संबंध है या आत्मिक रिश्ता है? ये देह के रिश्ते हैं, ये देहधारियों की दुनिया है, आत्मिक स्थिति वालों की दुनिया तो देवताओं की दुनिया होगी। अभी वो देवताओं की दुनिया आने वाली है, ये देह के रिश्तों की दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए स्त्री पुरुष का झगड़ा, कन्याओं माता का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा चल पड़ता है। और ये झगड़ा भी किस बात पर चलता है, है? इसी पवित्रता की बात पर झगड़ा चलता है। मां लोक लाज के चक्कर में आकर के कहती है बच्ची की शादी जरूर करनी है, और बच्ची कहती है मुझे शादी नहीं करनी है। बाप कहता है शादी जरूर करनी है, नहीं तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा समाज में। बेटा कहता है शादी नहीं करनी है। ऐसे ऐसे झगड़े होते रहते हैं, सिर्फ इसी बात पर झगड़े होते हैं। अभी भगवान वाचे क्या, काम महाशत्रु है। इस काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। कहा भी जाता है काम जीते जगत जीत। और जगत जीत बनने वालों का तो यही घराना है। कौन सा है? ज्ञान सूर्य के बच्चों का ज्ञान सूर्यवंशी खजाना, जो इस खजाने को धारण करके ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं। अभी है भी बहुत सहज बात, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। नहीं बैठती है तो कहेंगे पत्थर बुद्धि है। क्योंकि प्योरिटी से ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। प्योरिटी नहीं है तो दुनिया में यूनिटी भी नहीं हो सकती। इन देवताओं की कितनी पूजा होती है मंदिरों में, पूजा का आधार ही है प्योरिटी। तो जरूर ये देवताएं यूनिटी वाले थे। जिन देवताओं की दुनिया में एक ही धर्म, एक ही राजा, एक ही कुल, एक ही भाषा होती थी, तो कहेंगे यूनिटी की दुनिया थी। इसलिए बोला कि जब तक ईश्वरीय बुद्धि बने, दैवी संस्कार धारण हो और खान पान शुद्ध हो जाए, ये बातें जरूरी हैं। आजकल आदतें बहुत ही कड़ी होती हैं मनुष्यों में। بیڑی اور سگریٹ کی عادت تو آج چھوٹے بچوں میں بھی دیکھی جاتی ہے. اور یہاں اس گیان مارگ میں تو یہ سبھی باتیں چھوڑنی ہیں. گائن بھی ہے انتکال جو استری سمرے, انتکال میں وہی باتیں یاد آتی ہیں جو سارے جیون پرشارتھ کیے ہیں. تو انتکال میں اگر استری یاد آ جاتی تو ضرور ان کو ایسی دنیا میں جنم ملے گا جس دنیا میں ویشیاں اور لمپٹ ہی ہوتے ہیں. تو ایسوں کو سمجھانا بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایسوں کو کہا جاتا ہے 100% پتت. نئی دنیا میں ہوتے ہیں 100% پابند. ان باتوں کو سمجھانے میں بڑا ساہس چاہیے. وہ بابا رام دیو کے فالوورس ہٹ یوگ کی کتنی محنت کرتے ہیں, وہ بھی ایزی ہے. کیوں ایزی ہے؟ کیونکہ ان کو مایا راون کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. اور تم کو تو مایا راون کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. بابا تو راستہ بہت سہج بتاتے ہیں. نام ہی ہے سہج راج یوگ, سہج گیان. باپ کہتے ہیں اے بچے ابھی تمو پردھان سے ستو پردھان بننا ہے. بننا ہے یا بن گئے؟ بننا ہے. اس کے لیے دیوی گن بھی چاہیے اور بڑی شانتی چاہیے. کوئی بھی کرودھ کرے, ایول باتیں بولے تو ایسے ٹائم پر کان میں پٹی باندھ دو. کیا کرو؟ ہیئر نو ایول. کوئی جواب نہیں دینا ہے. ٹاک نو ایول. پرنتو اتنی طاقت کوئی کوئی ویرلے میں ہوتی ہے. جن کی بدھی میں ایشوریہ گیان سمایا ہوا رہتا ہے